sometimes we spend many hours at each place.
Very holy places of Kurukshetra. It is the place throughout all the world where Bhishma Dev is honored and worshipped.
ये जगह है जहाँ पर श्री भीष्मदेव को सम्मानित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती
है। Is one of the eight vasus.
भीष्म एक अष्टवसु में से एक है।
And he descended into this world as the daughter of Ganga and the son of Maharaj Shantanu.
और वो वहाँ पर इस पृथ्वी पर शंतनु और गंगा के पुत्र के रूप में अवतरित हुए।
In the Mahabharata, Srila Vedavyas describes in elaborate detail the wonderful birth and life of Bhishma Dev. Ganga Devi, when she married Maharaj Shantanu, there was a promise that he would never question anything she did.
जब गंगा देवी और शंतनु महाराज का विवाह हुआ था, तभी ऐसी वो दोनों के बीच में एग्रीमेंट था कि वो जो भी कुछ करेगी वो उसको कोई पूछना नहीं चाहिए।
He made the promise.
और शंतनु
She said, if you ever question me, I will leave you. So, he was the great king of the whole world, the king of the Kurus, pregnant with a child. Long expected desire to see a son who could be the prince to be the next king.
और उनकी मन की बहुत इच्छा थी कि एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो उनके बाद राज कर सके।
But immediately after giving birth to a beautiful, beautiful male son, Ganga took the baby infant, went to the Ganga, and threw the child in the Ganga.
लेकिन जब गंगा ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो वो इतना सुंदर पुत्र था, और उनको उनके देखते-देखते उन्होंने जाकर गंगा नदी पे जाकर उसको नदी में फेंक दिया.
Santanu Maharaj watched with his own eyes. And he was heartbroken, but he could not say a word.
और महाराज शंतनु ये सब आंखें फाड़-फाड़ के देख रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए.
So he begot within her another child.
तो फिर उन्होंने एक और पुत्र से गंगा गर्भवती रह गई.
And immediately after the birth of another beautiful, heroic son, she took the child and threw the infant in Ganga.
और दूसरे पुत्र के जन्म के बाद भी वो भी पुत्र बहुत दिखने में सुंदर था, उसको भी गंगा ने यहाँ गंगा में आकर फेंक दिया.
And again, Maharaj Santanu, it was the most terrible shock which broke his heart.
और महाराज शंतनु ये देखकर उनको हृदय पूरी तरह टूट गया.
This happened again and again and again.
ऐसी बार बार होता रहा.
I believe it was 7 children in a row she threw in the Ganga.
एक के बाद एक करके 7 पुत्र उसने गंगा में फेंक दिए.
And then another child was born.
और फिर और एक पुत्र का जन्म हुआ.
And she immediately took the infant and went to the Ganga.
और वो तुरंत उसे लेकर गंगा नदी पर गई.
And when she was about to throw him in, Santanu could not control himself any longer. He began to weep in despair, and he said, "Why? Why do you keep murdering your own children?"
और जब वो 8वें पुत्र को फेंकने वाली थी, तब शंतनु महाराज से रहा नहीं गया. वो बहुत जोर से चिल्लाकर पुकारने लगे कि क्यों अपने बच्चे को मार रही है तू?
How can you be so cruel?
आप इतने क्रूर कैसे हो सकती हो?
So she explained that she was actually from the upper planets, the heavenly abodes, but she was cursed to take birth as a mortal. In this world.
तो उन्होंने बताया कि वो असल में इस दुनिया की नहीं है, वो स्वर्ग लोक से आई है और उनको शाप दिया गया था कि उनको इस मर्त्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा.
At about the same time, the 8 vasus offended one rishi by accident, and they were also cursed to take birth in this earth planet.
और लगभग उसी समय अष्टवसु नाम के जो 8 साधु थे, उनको भी ये शाप मिला था कि उनको भी मरते लोग में आकर जन्म लेना पड़ेगा.
So they approached Ganga Devi and said, "Please, let us. All we have to do is take birth. Let us take birth from your womb, but promise us that as soon as we're born, you'll throw us in the Ganges so we can immediately have our heavenly abodes back and live on our heavenly planets.
तो उन अष्टवसु ने बताया कि हमको शाप तो ये है कि हमको जन्म लेना पड़ेगा, तो आप ऐसा करो, आपके उधर से हम जन्म लेते हैं और हमारा जन्म होने के तुरंत बाद आप हमको नदी में डाल दो ताकि फिर से हमारा स्वर्गलोक हमको पुनर्प्राप्त हो जाए.
So I out of kindness and love for them, I didn't want to see them suffer the miseries of this world, but to have the pleasures of their own heavenly abodes. But now you have stopped me. You have asked me. So I will let you have this one son. But I will leave you because you have questioned me.
तो गंगा जी ने बताया, गंगा माता ने, कि मैं उनके प्रति प्रेम और करुणा के प्रेम भाव रखते हुए उनको मैं तुरंत मारती थी ताकि उनको फिर उनका स्वर्गलोक प्राप्त हो. और अभी आपने, जैसे हमारा पहले एक दूसरे को हमने वचन दिया था कि आप मुझे, आप मेरे कोई कार्य में प्रश्न नहीं पूछेंगे कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, अभी आपने पूछा है, तो इस पुत्र को आप रख दो और मैं अभी आपको छोड़ के जा रही हूँ.
She said, I will take this child for 12 years to the heavenly worlds and I will have him trained to be this greatest king the world has ever seen.
मैं इस बालक को 12 साल के लिए अपने पास रखूंगी और उसको सर्व प्रकार की धनुर्विद्या, युद्ध विद्या में उसको इतना विशारद, निपुण बनाऊंगी कि इसके जैसा वीर या राजा दुनिया ने शायद कभी देखा होगा.
So Santanu Maharaj was so heartbroken. Not only did his beloved wife left, but she also took his only surviving son.
Santanu Maharaj बहुत दुखी हो गए क्योंकि उनकी पत्नी भी वो खो बैठे और एक लौता पुत्र था बचा, वो भी चला गया.
About 12 years later, Maharaj Santanu went to the bank of the Ganges and he saw that somebody had created a dam with arrows by shooting arrows in the water. And it was such a perfect dam that not even a drop of water of the Ganges could get through any two arrows.
12 साल के बाद जब एक बार संतनु महाराज गंगा नदी पे आए तो उन्होंने एक अद्भुत चीज़ देखी. किसी ने तीरों से एक ऐसा बांध बना दिया था, एक के बाद एक तीर चलाकर, कि पानी की एक बूंद भी आगे नहीं जा रही थी.
And he was thinking, there is no one on earth who has such power to do this.
और उन्होंने सोचा कि दुनिया में ऐसा कोई धनुर्वीर नहीं है जो इस तरह से बांध चला सकता है.
At that time, Ganga Devi appeared and said, this is the work of your son.
उस समय गंगा जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि ये आपके पुत्र का काम है.
His name is Devavrata.
उन्होंने कहा उनका नाम देवव्रत है.
And Devavrata came and she turned Devavrata over to his father and she said that he has studied all the scriptures under Brihaspati.
तो उन्होंने कहा इनका नाम देवव्रत है और ये उसको बताया कि ये आपके पिताजी हैं और उनके पिताजी से कहा कि ये पुत्र सारे शास्त्रों में निपुण है और उन्होंने बृहस्पति जी के पास सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है.
And he knows everything that Brihaspati knows and he studied the military arts from Lord Parasaram himself and he is equally powerful to his own guru.
और उन्होंने बताया कि बृहस्पति को जितना ज्ञान है उतना सब ज्ञान उन्होंने इसको दिया है और उन्होंने युद्ध कला जो है वो श्री परशुराम के पास सीखी है और परशुराम के पास जो भी कुछ ज्ञान है वो भी उन्होंने पूर्ण उसको दे दिया है.
Indeed, he was trained in all the higher sciences of military, politics, scripture, religion, devotion by the greatest of the gods.
और बाकी सारे जो युद्ध, राजनीति, कला, विज्ञान आदि सभी शास्त्र हैं, ये सभी देवता ने उसे वो ज्ञान दे दिया है.
He was the embodiment of all noble, moral, courageous and divine qualities.
और वो मानो सारे दैवी और नीति के गुण का मूर्तिमान प्रतीक है.
And he was also the most faithful and beloved son of the king.
और वो आपका सबसे निष्ठावान प्रामाणिक पुत्र भी है.
Anyways, later on, the king very much wanted to marry the beautiful Satyavati.
उसके बाद चंद्रनंद महाराज को एक सत्यवती नाम की एक युवती से विवाह करने की इच्छा हुई.
But Satyavati's father refused to allow her to marry King Santanu unless his grandson, Satyavati's father's grandson, would be the next king.
लेकिन सत्यवती के पिताजी ने कहा कि जब तक मेरा पौत्र यानी सत्यवती का पुत्र जब तक राजा नहीं होता ये मुझे वचन नहीं मिलता मैं इस विवाह को सम्मति नहीं दूंगा.
So Bhishma Dev pleaded on behalf of his father, and he took a vow that to ensure that your grandson becomes king, I vow that I will never marry, and I will remain celibate, and I will never take the throne as long as I live.
तो भीष्म ने अपने पिताजी के उनके प्रति निष्ठा रखते हुए कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा ताकि मेरा कोई पुत्र नहीं होगा और मैं कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा ताकि ये राज सिंहासन जो है सत्यवती के पुत्र को ही मिल जाएगा.
When he took this vow, Devavrata, such a vow, giving up everything of the world out of loyalty to his father, the demigods in the heavens began to shower flowers and chant the name Bhishma, which means one who takes the most terrible vow. And from that day on, he became known as Bhishma Dev.
तो देवव्रत की ये प्रतिज्ञा सुनकर कि वो अपने पिता के प्रति असीम निष्ठा दिखाते हुए इस दुनिया के लगभग सारी उपभोग्य चीज़ों को त्याग कर दिया उन्होंने तो सारे देवता ने उनको भीष्म करके पुकारा. भीष्म यानी जो सबसे भयंकर प्रतिज्ञा लेता है.
During the battle of Kurukshetra, Bhishma Dev was the commander in chief of Duryodhana's armies.
कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म देव जो थे वो कौरव सेना के सरसेनापति थे.
Even though he is one of the 12 Mahajans and one of the greatest of all devotees of Sri Krishna.
वो 12 महाजनों में से एक हैं और भगवान कृष्ण के सबसे शुद्ध भक्तों में से भी एक हैं तो भी वो कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे.
People ask if he's such a great devotee, why he was fighting as the chief of the army of Duryodhana, which represented adharma.
अभी भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर भीष्म देव वो इतने अच्छे भक्त हैं तो फिर वो कौरवों के पक्ष में जो कि अधर्म का पक्ष कहलाता है उसका सिर सेनापतित्व क्यों कर रहे थे.
There is an external reason and internal reason.
इसका एक बाह्य कारण है और एक आंतरिक कारण है.
Externally, because Duryodhana was being supported and maintained by Duryodhana for so many years, he was obliged to fight for him.
बाह्य कारण यह है कि भीष्म पितामह दुर्योधन का नमक खाए थे तो उनको लगा कि इनकी हमने चाकरी की है इनका पैसा लिया है तो इस वक्त उनको छोड़ना ठीक नहीं है.
But Krishna says in Gita, sarva dharman purityaja mam ekam sharanam braja aham tvam sarva papibhyo moksha yishami masacha. Abandon all these forms of dharma and just surrender to me. And he was on that platform. Why didn't he just abandon his loyalty to Duryodhana and surrender to Krishna?
लेकिन कृष्ण भगवान तो गीता में कहते हैं कि ये सब भयंकर धर्मों को त्याग दो सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ और ये तो उनको पता था फिर भी उन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया.
The reason is that he knew the desire of Krishna.
कारण ये है कि उनको भगवान श्री कृष्ण के मन की बात जाननी थी.
He was the most powerful, most undefeatable person in the entire world.
वो दुनिया के सबसे पराक्रमी वीर थे.
During the battle of Kurukshetra, he destroyed half the Pandava army in one day.
कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने एक दिन में ही सारे आधी कौरव सेना को नष्ट कर दिया.
And the next day,
कौरव सेना को नष्ट कर दिया.
And the next day, he would have certainly destroyed the other half.
और दूसरे दिन वो निश्चित ही दूसरे आधे सेना को भी खत्म कर सकते थे.
This was his power.
ऐसी उनकी शक्ति थी.
But Krishna wanted to show that even the most knowledgeable, powerful, and greatest personality in the entire planet, if they are not on the side of Dharma and Krishna, they will be defeated and destroyed.
लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ये दिखाना चाहते थे वो कि दुनिया का सबसे पराक्रमी, सबसे ज्ञानी, सबसे विक्रमी पुरुष भी होगा, वो अगर अधर्म के पक्ष में युद्ध करेगा, तो उसका प्रभाव निश्चित है.
To show this lesson, he had to prove to the world with the greatest of all personalities, Bhishma. So it was in order to help Krishna to teach this lesson to the world that Bhishma agreed to take the wrong side and ultimately be defeated.
तो इसलिए उनको ये दिखाना भगवान कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि सबसे पराक्रमी कितना भी महान व्यक्ति हो, अगर वो कृष्ण या धर्म के पक्ष विरुद्ध है तो उसका पराभव निश्चित है। और ये भीष्मदेव जानते थे, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने उस कौरव सेना से युद्ध किया।
During the battle, he made a promise that either Krishna breaks his promise was that he would not fight to protect his devotee, otherwise Arjuna will be killed.
युद्ध के दरमियान उन्होंने प्रतिज्ञा की कि या तो कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, कृष्ण की प्रतिज्ञा ये थी कि वो कभी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, या तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है।
Again, he did this because he wanted to show the world that Krishna is willing to break his own word to protect his devotee.
तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उनको दुनिया को ये दिखाना चाहते थे वो कि श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए भी तैयार हैं।
So one day on the battlefield, Bhishma was fighting Arjuna.
तो एक दिन युद्ध के दरमियान अर्जुन और भीष्मदेव के बीच में युद्ध हो रहा था।
And Bhishma destroyed Arjuna's chariot. He had Arjuna, he was without a weapon. He was laying on the ground helpless. And Bhishma totally defeated Arjuna and was about to kill him.
और उसी युद्ध में भीष्मदेव ने अर्जुन के रथ को तोड़ दिया और अर्जुन पूरा निशस्त्र हो गया और पूरा जमीन पर ही था और अभी उसको मारने ही वाले थे वो।
At that time, Krishna, who vowed not to fight and not to lift a weapon, he lifted one of the wheels of the chariot, and with eyes red like hot coals, he charged at Bhishma.
और उसी समय बहुत क्रोध आने के कारण श्री कृष्ण भगवान ने एक टूटे रथ का पहिया उठाया और तप्त कोयले की तरह उनकी आंखें क्रोध से जल रही थी मानो, और उस तरह से वो आवेश में आकर भीष्मदेव को मारने गए।
And as he charged, Bhishma was shooting arrows in Krishna's body.
और जैसे ही वो उनकी तरफ जा रहे थे तभी भीष्मदेव श्री कृष्ण के उनके शरीर के ऊपर तीर छोड़ रहे थे।
But he was shooting them with pure love and devotion.
लेकिन वो एक एक तीर बहुत भक्ति से भरे हुए अंतकरण से छोड़ रहे थे।
And Krishna, who is absolute, accepts the offerings of his devotees with great pleasure.
और कृष्ण पूर्ण होने के नाते वो भक्तों के जो भी भक्त अर्पण करता है उस चीज को स्वीकारते हैं।
So although his body was being pierced by arrows and bleeding, Krishna felt the arrows of Bhishma, which were offered with pure devotion, just like he feels the soft flowers offered upon his body by his devotees.
तो भीष्मदेव के तीर श्री कृष्ण के शरीर को चीर रहे थे, उसमें से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी उनको मानो ऐसा अनुभव हो रहा था कि कोई बहुत ही प्रेमी भक्त उनको फूल माला अर्पण कर रहा है।
And when Krishna was charging at him with his wheel in hand, his body covered by the dust raised by the hooves of the horses, and blood coming from his body from the arrows of Bhishma, Bhishma, in total surrender and pure devotion, he fell at the feet of Krishna and surrendered.
जब भीष्मदेव ने देखा कि श्री कृष्ण उनके तीरों से घायल हुए हैं और जो घोड़ों के खुर से जो धूल उठती है ऊपर, उनसे उनका पूरा शरीर धूल से भरा हुआ है, और उस विलोभनीय दृश्य को देखते उन्होंने अपने शस्त्र नीचे डाल दिए और कृष्ण के चरण पकड़ लिए।
कृष्ण टोल्ड अर्जुन, कौन ते अप्रतिजानहीन मे भक्त अप्रनश्यति, यू डिक्लेयर अर्जुन दैट आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट माय डिवोटी, एंड भीष्मदेव out of his great glorification of Sri Krishna, proved to the world the extent in which Krishna will always protect his devotee.
तो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप जाके घोषणा करो कि मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता, और श्री भीष्मदेव ने ये बात इतनी उच्च कोटि की के उदाहरण से बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कोई भी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार है।
So as I was explaining, on one day, I believe it was the 10th day of the battle, Bhishma, invoked by Duryodhana, fought so furiously he destroyed practically half the Pandava army and the Pandavas, and nobody could even fight against him. He was like a tornado of strength. Everyone just watched him annihilating everything.
तो ये लगभग युद्ध का 10वां दिन होगा जब भीष्मदेव इतना त्वेष से युद्ध कर रहे थे कि उन्होंने आधे पांडव सेना को ख़त्म कर दिया और बाकी जो सेना जो थी वो हतबल होकर खाली देखती रह गई कि बस सबका संहार करते जा रहे हैं.
So that night, Krishna spoke with the Pandavas that if Bhishma fights tomorrow, the war will be finished. We will lose. So the Pandavas with Krishna went to Bhishma's tent that night to ask him how he could be killed.
तो उसी शाम को श्री कृष्ण ने बताया कि कल अगर इस तरह से युद्ध हुआ तो ये युद्ध कल समाप्त होगा क्योंकि हम लोग नहीं बचेंगे. तो उसी रात को पांडव श्री भीष्मदेव के शिविर में आकर उनसे पूछने लगे कि उनका पराभव कैसे हो सकता है.
Because Bhishma had received the benediction from Maharaj Santanu that he could not be killed by any means. He would only die when he personally decided to die.
क्योंकि भीष्मदेव को शंतनु महाराज से एक वरदान प्राप्त हुआ था कि वो इच्छा मरण के अधिकारी हैं. जब तक वो इच्छा नहीं करते वो कभी मरेंगे नहीं.
So Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva and Krishna went to his tent and with tears in their eyes they begged, "Grandfather, please tell us how we can kill you."
ये पांडव भीष्मदेव के शिविर में जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि पितामह बताइए. बहुत अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना कर रहे थे कि आप कृपया बताइए आपकी मृत्यु कैसे हो जाएगी.
Although we love you more than we love our own lives, still it is Krishna's desire.
तो हम आपसे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, फिर भी ये श्री कृष्ण की इच्छा है.
So Bhishma became blissful.
तो ये सुनकर भीष्म बहुत ही आनंदित हो गए.
And he began to weep in ecstasy.
और वो भाव में आकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे.
And he explained how he could be killed.
और उन्होंने विस्तार से वो बताना शुरू कर दिया कि किस तरह से वो मारे जा सकते हैं.
He said, "Tomorrow on the battlefield, you all surround me, and first bring about Sikandi, and let him shoot the first arrow, and then everybody around must shoot arrows. But of everybody in the whole Pandava army, only Arjuna's arrows can pierce my body. He must pierce me from my neck to my feet, and not leave a single inch between arrows."
कल जब युद्ध शुरू हो जाएगा, तभी आप सब पांडव मुझे घिर दो और सबसे शुरुआत में शिखंडी जो है उनको सामने रखो और उनको पहला तीर छोड़ने के लिए कहना. और आप पांच पांडवों में से अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी के तीर मेरे शरीर को छेद नहीं सकती. और अर्जुन से कहा उन्होंने कि आप मेरे गले से लेकर मेरे पैर तक इतने तीर छोड़ना कि दो तीरों के बीच में तीसरा तीर नहीं जाना चाहिए.
So it was in this place on the battlefield that Bhishma stationed his chariot and all the Pandavas surrounded him.
कुरुक्षेत्र के लड़ाई के युद्ध क्षेत्र में यही जगह थी जहाँ पर भीष्मदेव अपना रथ रख चुके थे और वहाँ पर उनका और पांडवों का युद्ध हो रहा था.
And it was here that Bhishma personally ordered Shikhandi, "Shoot me."
और यहाँ पर इसी जगह पर भीष्मदेव ने शिखंडी से कहा कि पहले तीर आप चलाओ.
And then he ordered Arjuna, "Shoot."
और फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि तीर चलाओ.
And Arjuna loved his grandfather so dearly, with tears in his eyes, he began to shoot arrows in his body.
और अर्जुन अपने पितामह से इतना प्रेम करते थे और उसी अवस्था में उनको तीर छोड़ना पड़ा.
But because of love, he was not shooting very hard. So the arrows, Bhishma's body was like steel, so the arrows were not penetrating.
और इतने प्रेम के कारण वो तीर जो छोड़ रहे थे उसमें कोई ज़्यादा शक्ति नहीं थी, तो वो तीर उनके शरीर को भेद नहीं रहे थे, क्योंकि भीष्मदेव का शरीर जो फौलाद की तरह था.
So Bhishma requested Arjuna, "Shoot with all of your strength."
तो भीष्म ने कहा कि पूरी शक्ति से तीर चलाओ.
And as Arjuna was weeping in love, he was shooting with all of his might. The arrows from his mighty Gandiva bow, and each arrow was going in one side of his body and out through the back.
तो फिर अर्जुन रोते रोते एक एक तीर छोड़ रहे थे और पूरी शक्ति से उनका जो महान गांडीव धनुष था उससे जो तीर निकल रहे थे वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह से बाहर निकल रहे थे.
And Bhishma was tolerating all of the arrows until from his neck to the bottom of his feet, his body was covered with so many arrows that you could not place one little finger between any two arrows.
और फिर धीरे धीरे उनके गले से लेकर उनके पैर तक इतने तीर थे कि आप दो तीर के बीच में एक उंगली भी नहीं डाल सकते थे.
And it was at this very holy site in Kurukshetra that Bhishma very graciously and gracefully laid down in the bed of arrows.
और युद्ध क्षेत्र के इसी बहुत पवित्र स्थल पर भीष्मदेव जो हैं पूरा शरीर जो तीरों से भरा हुआ था यहीं पर इस शरशय्या पर लेट गए.
In honor of him, both sides stopped the whole war for that day, the 11th day of the battle, and every soldier came to offer their respects and obeisances to the greatest of all heroes, Bhishma.
और इस सबसे महापराक्रमी वीर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उस दिन के लिए युद्ध खत्म हो गया और हर एक सैनिक जो भी था वो उनको कुछ सम्मान अर्पण करने के लिए उनका दर्शन लेने के लिए यहाँ आ रहे.
So the arrows went through his body, so his body was raised on this bed of arrows, but his head was leaning back. It was very uncomfortable.
तो उनका शरीर में पूरे तीर थे लेकिन उनके सर में कोई तीर नहीं था इसलिए उनको बहुत परेशानी हो रही थी.
Duryodhana came and brought a very beautiful silk pillow to put behind his head.
और दुर्योधन ने तुरंत एक रेशम का तकिया लाकर उनके सर के नीचे रखना चाहा.
And it was at this place that Bhishma rejected the silk pillow of Duryodhana.
तभी भीष्म ने उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
He said, "In the battlefield, no one can accept luxuries."
मैंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में कोई भी आराम की चीजें स्वीकार नहीं कर सकता.
But Arjuna, knowing the heart of Bhishma, took his own arrows with his Gandiva bow and started shooting them in the ground and made a pillow of arrows for Bhishma to lean his head against.
Arjuna ne Bhishma Dev ki man ki baat jankar ek aise teer chhode ki teeron se hi ek takya ban gaya jo unke sharir unke sar ko theek se rakh sake.
And then Bhishma looked at Arjuna and said, "I am thirsty."
Phir Bhishma Dev ne Arjun ko dekh kar kaha ki mujhe pyaas lagi hai.
In this very place where is now a kund, this is the very spot that Arjuna took an arrow and put it to his Gandiva bow and shot it in the ground. And by the grace of Sri Krishna, out of his love for his devotee, from the ground, Mother Ganga began to shower water that went right up into Bhishma Dev's mouth.
And Arjuna, when he threw a tear, then by the grace of Sri Krishna's grace, Ganga Mata appeared there. और उन्होंने ऐसे एक जल की धारा छोड़ी जो सीधे भीष्मदेव के मुख में जाकर गिर रही थी.
भगवान श्री कृष्ण की
जय.
सो भीष्मा फॉर सेवरल मंथ्स रिमेन्ड लेइंग हियर. आफ्टर द 18th डे ऑफ द बैटल द पांडवस वर विक्टोरियस. दे रिटर्न्ड टू हस्तिनापुर. युधिष्ठिर was enthroned as king, but he was feeling very, very despondent. He was thinking that so many people died because of me. So Krishna brought Yudhisthira and the Pandavas back here to Kurukshetra, where Bhishma was sitting, waiting for many, many months for Krishna to return.
18 din ke baad yuddha samapt ho gaya, Pandavon ki jeet ho gayi, Kauravon ki haar ho gayi. और भीष्मदेव यहीं पर पड़े रहे थे और उसके बाद पांडवों का राज्याभिषेक हो गया. युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा हो गए. फिर भी उनको मन में इतना दुख हो रहा था कि इतने करोड़ों लोगों की हत्या सिर्फ मेरे इस राजलोभ के कारण हुई तो उनका कहीं मन नहीं लग रहा था. तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को फिर इसी जगह पर ले आए.
भीष्म वाज लाइंग हियर इन द बेड ऑफ एरोस. ही वुड नॉट गिव अप हिज बॉडी विदाउट फर्स्ट वर्शिपिंग the Supreme Lord Krishna in his own divine presence.
तो वो भगवान की यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे और जब तक भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से देखते नहीं वो अपना शरीर त्यागने को तैयार नहीं थे.
A major portion of the Mahabharata is the teachings of Bhishma Dev to Yudhisthira on the principles of dharma.
महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्मशास्त्र के बारे में उपदेश दिया था.
It was on the day of Makara Sankranti that the sun entered into the northern hemisphere. When Bhishma saw this, he understood it was an auspicious time to die.
तो मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य ने उत्तरायण प्रवेश किया तभी भीष्मदेव ने सोचा कि यही शरीर त्यागने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है.
At that time he discontinued his in-depth instructions to Yudhisthira and focused his all of his attentions on the beautiful form of Sri Krishna.
तब उन्होंने अपना उपदेश खंडित बंद कर दिया और वो अपना सारा ध्यान जो है भगवान श्री श्याम सुंदर के रूप पर केंद्रित करने लगे।
In the first canto of Srimad Bhagavatam, it describes the most beautiful, illustrious prayers of Bhishma to Krishna during his final moments on this earth.
श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में श्री भीष्म देव ने जो इतनी सुंदर प्रार्थना की है, उनका वर्णन आता है।
They are prayers of pure, unalloyed devotion, which have been worshipped and recited by the greatest of all saintly persons.
तो ये इतने भाव भक्ति से भरे हुए प्रार्थनाएं हैं कि ये सारे भक्तों ने, आचार्य ने इनकी सराहना की है।
And then fixing his eyes unblinkingly on the beautiful form of Parthasarathi Krishna, with his lips continuously chanting his holy name, with his heart, his mind and his soul completely absorbed in worshipping his lotus feet, Bhishma gave up his body by the arrangement of Lord Shri Krishna.
और भगवान श्री कृष्ण का नाम मुख से लेते हुए, अनिमिष नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण का रूप देखते हुए और मन में पूर्ण भक्ति भाव से अपना सारा चित्त उनके ऊपर एकत्रित करते हुए श्री भीष्मदेव ने अपना शरीर त्याग दिया।
At that time, with hearts full of love, Krishna and the Pandavas worshipped Bhishma Dev in this spot and performed the last rites for him.
तभी हृदय में प्रेम की भावना से, पूर्ण प्रेम की भावना से भरे हुए हृदय से श्री कृष्ण और पांडवों ने श्री भीष्मदेव का अंत्य संस्कार किया और यहीं पर उनको प्रणाम अर्पण किया।
In Chaitanya Charitamrita, when Haridas Thakur left his body in the divine presence of Lord Chaitanya, all the devotees of Lord Chaitanya remembered the beautiful passing of Bhishma Dev.
Chaitanya Lila में जब श्री हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग दिया था महाप्रभु के सानिध्य में, तभी सारे भक्तों को इस प्रसंग का स्मरण हुआ।
It is considered in all the great scriptures the most perfect example of how to leave this world was established by Bhishma Dev right here in complete meditation and concentration on the mercy of Lord Shri Krishna.
तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस प्रकार से हम शरीर त्यागना चाहिए, उसका ये सबसे उदात्त वर्णन और ये सबसे अच्छा उदाहरण श्री भीष्मदेव ने यहाँ पर दिखाया, इसी जगह पर।
In this holy place where we are now so fortunate to be sitting, we should all humbly offer our worship and our prayers to Bhishmadev and to Lord Shri Krishna and to our spiritual masters who are revealing all of these sublime truths. And we should pray that we can strive in our life to follow in the footsteps of Bhishma. Such dedication to be willing to accept even humiliation and misunderstanding in the service of the Lord. Such determination to follow one's vows even in the face of the greatest temptations. And ultimately, such devotion where we could firmly fix our heart and our minds on Krishna in our life and at the time of death.
तो यहाँ इस जगह पर हमको श्री भीष्मदेव को, श्री कृष्ण भगवान को, हमारे गुरु महाराज को नम्र प्रणाम करना चाहिए। हमको ये स्मरण रखना चाहिए कि कितनी उदात्त त्याग बुद्धि से, खुद के सुख के बारे में बिल्कुल कुछ चिंता न करते हुए, जिस प्रकार से भीष्मदेव ने भक्ति का उदाहरण दिया था, उसको स्मरण करते हुए यहाँ पर हमको उनको प्रणाम करना चाहिए और उसी तरह से हमको अपना जीवन, जिस तरह से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए।
Let us take a moment to offer this prayer to the Lord.